नमस्ते। सावित्री बुक टू कैंटो 14 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग उस भाग को पढ़ेंगे। दो पेज का है लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये कैंटो अपने आप में बहुत लंबा नहीं है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैंटो है कई दृष्टि से। ये वो शिखर है विश्व चेतना का जिसके बाद वास्तव में देखा जाए तो इससे गुजरने के बाद ही श्री अरविंद के योग की वास्तविक शुरुआत होती है। जब इवनिंग टॉक्स में किसी ने श्री अरविंद से पूछा था कि क्या कंडीशंस हैं जो आवश्यक हैं हमें सुप्रमेंटल ट्रुथ को नीचे आने के लिए, तो श्री अरविंद पहले हेजिटेट करते थे, कहते थे कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अभी। और फिर उन्होंने एक जगह कहते हैं कि यू हैव टू गो थ्रू द प्लेन ऑफ द गॉड्स। तो फिर जब डिसाइपल ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं अभी, बिकॉज वो समय नहीं था उस समय उसको विस्तार से समझाने का। बाद में 1926 में आई थिंक अगस्त की टॉक्स हैं तो कहते हैं कि पहले मैं इस चीज़ में बहुत तुम लोगों से वार्तालाप नहीं करता था लेकिन अब ये करना ज़रूरी हो गया है क्योंकि यदि मैं ये नहीं करूँगा तो ये आवश्यक है हमें समझना। और वो नेचुरली देख रहे थे कि आने वाले 3-4 महीनों में, नवंबर का महीना जिसमें 24 नवंबर को सिद्धि दिवस के दिन सारे देवता करीब आ रहे थे धरती के करीब और उनका कार्य चल रहा था ओवर माइंड के ऊपर, तो तब उनको ये स्पष्ट करना आवश्यक था कि ये प्लेन ऑफ द गॉड्स क्या है। तो प्लेन ऑफ द गॉड्स अब हम देखते हैं कि हेवन्स ऑफ द आइडियल से प्रारंभ, ये सारा ओवर माइंड का ही प्लेन है और ये अपने आप में बहुत विशाल क्षेत्र है, बहुत विस्तृत है और ये इतना अधिक डैजलिंग है कि आश्चर्य नहीं है। सीमा ये बताती कि आश्चर्य नहीं है कि जिन्होंने इसको देखा उन्होंने इसे अल्टीमेट सुप्रीम ट्रुथ समझ लिया। माँ स्वयं इस बात की पुष्टि करती हैं कि मैनी हैव फेल्ट लाइक दैट। श्री अरविंद कहते हैं कि स्वयं मुझे लगता था कि यही सुप्रीम ट्रुथ है लेकिन वहां उनको चाबी नहीं मिलती है जिस चीज के लिए वो आ रहे थे, इन विच द वर्ल्ड एंड गॉड ग्रो ट्रू एंड वन, इसलिए वो उस आगे जाने की बात करते हैं। तो इस कैंटो में ये एक प्रकार से हम देखें कि एक विस्तृत मैजिक सर्किल है, यानी दो मैजिक सर्किल है हमारे चारों तरफ। एक एक पर्टिकुलर लाइफ में प्रकृति हमें एक हमारी इंडिविजुअल प्रकृति के रूप में एक मैजिक सर्किल डाल देती है, उसमें जो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण इसकी एक परिधि होती है और हमारा कार्य होता है कि उसको विस्तार करते जाना जब तक कि हम उससे नेक्स्ट लेवल पे नहीं चले जाते। ये एक एवरेज ऑर्डिनरी स्लो मोशन में जो इवोल्यूशन होता है उसमें होता है लेकिन योगी इसको चीर करके स्ट्रेट लाइन उनका इवोल्यूशन, जिससे कि वो जल्दी जल्दी इन स्टेयर्स को प्रोसेस सेम रहती है विस्तृत करते हुए लेकिन इट इज़ ए वेरी फास्ट फॉरवर्ड प्रोसेस। तो एक ये सर्किल है लेकिन एक दूसरा सर्किल है वो विश्व चेतना का। अब विश्व चेतना में मानव मन के परे हायर स्टेट्स हैं कॉन्शियसनेस के, ग्रेटर माइंड है, ये सब अभी विश्व चेतना के अंतर्गत है लेकिन इंडिविजुअल माइंड के परे है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल माइंड को जब एक्सीड करते हैं कुछ योगी, साधारण जीवन की परिधि के परे चले जाते हैं तो विश्व चेतना के परे नहीं जाते, दे आर स्टिल इन द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। लेकिन उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो साधारण मनुष्य ने उनको एक्सप्लोर नहीं किया। साधारण मनुष्य की पहुंच तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण इसके घेरे में है। अब ये जो स्टेट्स हैं ये इसके परे जाने लगती हैं, वहाँ प्रकाश बढ़ने लगता है, वहाँ आनंद बढ़ने लगता है, ये वैसी ऊर्जा के क्षेत्र हैं। तो उन क्षेत्रों में भी जो योगी गए हैं वे भी विश्व चेतना के परे नहीं जा पाते हैं। तो उनको अगर जाना है उसके परे तो दे हैव टू जस्ट टेक ए लीप। श्री अरविंद बताते हैं कि वो जिस भी लेवल पे खड़े हैं ग्रेटर माइंड पे वहाँ से वो छलांग लगा सकते हैं। वो सच्चिदानंद सर्वत्र हैं, माँ बताती हैं कि इट इज़ लाइक ए लैडर ऑफ कॉन्शियसनेस, आप कहीं से भी छलांग लगा सकते हो। लेकिन विश्व चेतना से परे जाने का मतलब है एसेंट करते हुए वर्टिकली आप जा रहे हो। तो वर्टिकली जाने की किसी ने आवश्यकता नहीं समझी, किसी ने इल्यूमिन माइंड, किसी ने माइंड ऑफ रेवलेशन, किसी ने इंट्यूटिव माइंड पे अपना एक स्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस निर्धारित कर लिया जहाँ वो रहते हैं अधिक से अधिक, वहाँ से कार्य करते हैं और सारी मनुष्यता पर लाइक ग्रेट मास्टर। सो फिर जब समय आता है तो वो अपने अंदर जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया है, जहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा है, वहाँ किसी को सौंप करके वो महानिर्वाण में चले जाते हैं। देखो बियॉन्ड द मैनिफेस्ट, तो मैनिफेस्टेशन ये जो सारा है त्रिविध प्रकृति का ये ओवर माइंड तक एक्सटेंड करता है लेकिन आप इसके आगे नहीं जा सकते हो। हम देखते हैं कि कई कुछ असुरों ने भी ट्राई किया अपने तपस्या के द्वारा, वो जाते इंद्रलोक पर तो काबू कर लेते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं ब्रह्मलोक या उसको भी वो कैप्चर करना चाहते हैं, या अगर हम ओरिजिन देखें भागवत की तो मधु कैटभ जो स्वयं विष्णु भगवान से निकले, वो विष्णु भगवान को ही हराना चाहते हैं, लेकिन आप उसके पार नहीं जा सकते, इट इज़ नॉट अलाउड टू यू। तो वहाँ विष्णु भगवान भी किन किन को प्रार्थना करते हैं, वो जगन माता को, योग माया आती हैं और वो इस तरह का एक स्वांग रचती हैं, तो उसके पार वन कैन नॉट गो सिवाय एनिहिलेशन की। अगर आप अपनी सारी प्रकृति को छोड़ दें जैसे महानिर्वाण में, तब आप जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने विश्व चेतना का वो पढ़ा। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद भी हम इन लोगों से ट्रैवल करते हुए हम विश्व चेतना के उस भाग में पहुंचते हैं जो वर्ल्ड सोल, जो कोर है, जहां हम लोग बीज रूप में हैं और बीज रूप से हम निकलते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था ए फ्लेम दैट कैंसल्स डेथ इन मॉर्टल थिंग्स, तो वहां पर हम जाते हैं, उस पॉइंट को टच करते हैं, थोड़ी देर हम भगवान की गोद में, अगर इसको हम सिंपल हार्ट के वर्ड्स में लें तो भगवान की गोद, ये सत्य है, भगवान की गोद में जाते हैं जहाँ उनकी स्माइल, उनकी टच सारे अनुभवों को डिलाइट के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देती है। जितने भी जीवन के अनुभव हैं, जब हम उनको धरती पर रहते हुए उनको एक्सपीरियंस करते हैं तो मन उनके अंदर द्वंद्व डाल देता है, ये अच्छा है ये बुरा है, किस आधार पर, ईगो के आधार पर, जो चीज़ हमारे लिए जो सक्सेसफुल हो जाए या जो जीवन में हमारे सोच के हमारी विशेष फैंसीज इसके अनुरूप हो, डिज़ायर्स के अनुरूप हो, हम कहते हैं अच्छा है, और उसके आधार पर हम एक पूरा थ्योरी बिल्ड करते हैं कि यदि हमारे जीवन में वे सारी चीज़ें हो रही थी जैसी कि जो हम मांगते हैं या कामना करते हैं, तो भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, या भगवान को क्यों हम कहें, हमारे कर्म बहुत अच्छे थे इसलिए हमारे जीवन में ये हो रहा है। और इसके विपरीत जब हमारे जीवन में वे चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, अप्रिय लगती हैं, तो हम कह देते हैं कि ये हमारे पाप हैं जिनके कारण हम ये सब। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स सब जगह हुआ है, भारतवर्ष में भी हुआ है, क्योंकि ये जो कर्म का रहस्य है इसको पूरी तरह कोई नहीं समझा। गीता में हम देखते हैं कि सबसे अधिक सटीक अगर क्लोजेस्ट कोई वर्णन आता है तो वो श्रीमद् भगवद गीता में आता है। जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें क्लोजेस्ट जो वर्णन कार्मिक थ्योरी का आता है, एक तो उसमें ये आता है कि जो भी हम करते हैं जिस गुण के आधार पर हम करते हैं उससे कर्म फल निर्धारित होता है, ना कि हमारे बाहरी एक्ट से। सत्वगुण में किया गया वही कर्म उसका प्रभाव दूसरा होता है, रजोगुण में किया गया वही कर्म उसका प्रभाव दूसरा होता है, तमोगुण में किया गया वही कर्म उसका प्रभाव कुछ अन्य होता है। तो ये चेतना के अनुरूप कर्म का प्रभाव होता है, ये हम गीता में पहली बार देखते हैं, एक्ट पर नहीं। ये बाद में लोगों ने एक्शन के ऊपर, ये बाहर से जो तुम्हारा एक्शन है। दूसरी चीज जो गीता में आती है कि इसका प्रभाव मूलतः हमारे अंदर होता है, जो तमोगुण में दान दे रहा है, जो मर्जी जिसको मर्जी जिसने दे दिया बिना विचारे, देश काल पात्र के बारे में बिना सोचे, वो मूर्ता और अंधता पैदा करता है। अगर उसको पढ़ा जाए तो मनुष्य कहता है ओ माय गॉड, मुझे तो लग रहा था मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे मुझे और मूड बना रहा है, स्वयं को भी और दूसरे को भी, क्योंकि ये दिया गया है बिना कंसिडरेशन के। रजोगुण में किया गया कर्म, जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो रजोगुण में क्या होता है, उसमें डिजायर सेल बड़ा प्रोमिनेंट होता है, मुझे कुछ चाहिए रिटर्न, तो चूंकि उसमें रिटर्न चाहिए होता है और रिटर्न कभी भी आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होगा, क्योंकि विश्व प्रकृति हमारी अहंकार को केंद्र में रख के काम नहीं करती है और कर भी नहीं सकती है। आप विश्व प्रकृति को छोड़ लें, अगर एक सिंपल ग्रुप ले लें 5 लोगों का 10 लोगों का, क्या ऐसा होगा कि जो लीडर होगा हर किसी के तुष्टिकरण के रूप में काम करेगा? अगर वो करेगा तो बहुत दिन उसकी सरकार चलेगी नहीं क्योंकि ये संभव नहीं है। तो विषय प्रकृति तो केवल मनुष्य के लिए नहीं बनी है, वो तो सारे जीव जंतु प्राणी सबको लेकर के और केंद्र में उसके सत्य और धर्म है, उसके अनुसार वो काम करती है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अरे आश्रम में कोरोना हो गया या कहीं और ये हो गया, ये कोई भी ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट इवन डिवाइन वो अधर्म नहीं करेंगे, कुछ नियम है प्रकृति के, वो उसमें इंटरवीन करके उस चीज को मॉडिफाई कर देंगे। ग्रेस उसको कैंसिल कर सकती है, लेकिन ग्रेस के अभी हम लोग उस कॉस्मिक लॉ के अंदर कंपैशन आ सकता है, आपको वो चीज मॉडिफाई होके आप निकल जाएंगे, होगा लेकिन कुछ ज्यादा उसका असर नहीं होगा, माँ इसकी बात करती हैं, इंटरवीन होगी। तो कॉस्मिक लॉ के अंदर विधान बने हैं और उसको मिटाया नहीं जा सकता है, मिटाने के लिए कोई और चीज ऊपर से आनी है, जो यथा योग्य उचित समय पर हम लोग उसकी बात करेंगे। तो कार्मिक सिद्धांत क्या है? कार्मिक सिद्धांत पाप पुण्य और रिवार्ड पनिशमेंट का सिद्धांत नहीं है। रजोगुण में आप करेंगे तो उसका स्वाभाविक रिजल्ट होगा सुख और दुख। इसके लिए कोई चित्रगुप्त को कहीं बैठाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन के अनुसार होगा तो हमें सुख होगा और एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होगा तो हमें दुख होगा। क्योंकि हम डीपर विजडम को नहीं जानते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि भगवान ने मुझे दंडित किया या भगवान ने मुझे रिवार्ड किया। ये हमारी सोच की सीमा है। सत्वगुण का नतीजा क्या होता है? उसमें सुख होता है और प्रकाश होता है। ये सुख बड़ा सूक्ष्म सुख है, एक इनर हैप्पीनेस है और प्रकाश होता है। क्यों? क्योंकि आपने वह किया जो आपको करना चाहिए। सत्वगुण क्या है? वो है कि एक नियम होती है, हर चीज को करने का एक विधान है, एक नियम है और उसके अनुसार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक जगह माता जी से किसी ने कहा कि जब कोई तुम्हें प्रेम देता है तो, जब कोई हमें प्रेम करता है, जब कोई हमसे घृणा करता है तो भी हमें प्रेम करना चाहिए। बुद्ध देव की कोई राइट टीचिंग है। तो माता जी कहती, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले जो प्रेम देता है उसको तो प्रेम देना सीखो। तुम लोग सीधा स्किप कर रहे हो उस स्टेज में, जब कोई घृणा करता है उसको हम प्रेम देंगे, लेकिन जो प्रेम देता है उसको तुम किस तरह से व्यवहार कर रहे हो। तो ये सत्वगुण क्या करता है, उसके अंदर हर चीज का एक सिस्टम है कि किस प्रकार से हमको कोई कर्म करना चाहिए। और जब हम उसको, उस कर्म को उस नीति के अनुसार, उस नियम के अनुसार, उस शास्त्र के अनुसार, यहाँ शास्त्र की बोले किताब नहीं है जिसमें गुड और बैड लिखा हुआ है, उसके अनुसार करते हैं तो हमें स्पॉन्टेनियसली एक अंदर में प्रकाश और इनर जॉय होता है, रिटर्न मिले या ना मिले, क्योंकि हमने वो किया जो हमें करना चाहिए। जैसे फॉर इंस्टेंस प्रेम के ही बारे में, जब किसी ने माँ से कहा कि दे स्पीक अबाउट द राइट्स ऑफ लव, माँ का ये कहना है, माँ कहती है दे स्पीक अबाउट द राइट्स ऑफ लव बट द ओनली राइट ऑफ लव इज टू गिव वन सेल्फ। तो अब ये प्रेम का ये नियम है। उसी प्रकार से साधना का, तपस्या का एक नियम है, तपस्या ऑफ लव, तपस्या ऑफ ब्यूटी। तपस्या ऑफ ब्यूटी का ये कुछ और नियम है, जो श्री अरविंद बताते हैं ब्यूटी एंड हार्मनी हर लेवल पर होनी चाहिए। अगर आपको सौंदर्य की उपासना करनी है तो बाजार जाके क्रीम खरीदने से तो नहीं होगा। यू हैव टू मेक एवरीथिंग विद इन यू, थिंकिंग, फीलिंग, एक्शंस, विल, सराउंडिंग, सब कुछ सौंदर्य। उसी प्रकार से पावर की तपस्या है तो उसका एक अपना विधान है, शास्त्र है। आप छीन चपट के पावर नहीं ले सकते हो। जब भी किसी असुर ने यह प्रयास किया है तो कोलैप्स हुआ है। पावर को पाने के लिए आपको पूरी तरह अपने अंदर आत्मसंयम, असुर भी ये ट्राई करते हैं, जब वो पूरी अपनी सेल्फ मास्टरी करते हैं तो पावर को वो एक्युमुलेट करते हैं, लेकिन बाद में जब वो आ जाती है तो वो अलग बात है कि उनका ईगो सेल्फ नहीं समाप्त हुआ होता है, जो मेन चीज है। इस कारण इट गोज ऑन देयर हेड एंड डिस्ट्रॉयज देम। तो ये एक आम तौर पे कर्म सिद्धांत में दो चीजें हमें समझनी है कि बाहर के कर्म से अधिक इनर स्टेट जिसमें हम करते हैं उसके अनुसार होता है। दूसरी चीज की जो कर्म फल है वो आंतरिक है, ना कि ये बाहरी चीज है। बाहरी चीज का एक दूसरा लॉजिक है, गीता में उसके बारे में भी कहा गया है कि कौन सी ऐसी शक्तियां जो हमें बाहर परिस्थितियां या बाहर फल मिलता है वो क्यों मिलता है। लेकिन इसमें एक गैप है, अगर हम इस तरह भी ले लें तो गैप ये है कि लेकिन ये कर्म जो ओरिजिनेट करता है वो तो भगवान से स्वयं करता है। तो फिर गीता में ये तो स्पष्ट है कि कर्म ही बंधन में डाल सकता है और कर्म ही तुम्हें मुक्त भी कर सकता है, यहाँ तक तो स्पष्ट है। लेकिन ये जो सारा कर्म, ये जो ऊर्जाओं का खेल है, ये किस तरफ हमें ले जा रहा है? ये हम जो बार बार आते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर आते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इस श्रृंखला के पीछे क्या है, ये क्यों है और इसके द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? अगले जन्म में हम जब कुछ कोई एक तरह का पर्सनालिटी है दूसरी पर्सनालिटी लेके आता है, क्या खो जाता है, क्या साथ लेके आता है और किस आधार पर यह चलता रहता है, कब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये सारे गैप्स रह जाते हैं। अब श्री अरविंद की ब्यूटी है कि इस एक पैसेज में, लगभग डेढ़ पेज, श्री अरविंद ये सारी चीजें स्पष्ट कर देते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि जब ट्रेडिशनल हिंदू समाज में जब कोई मृत्यु होती है तो दो चीज़ें पढ़ते हैं लोग, या तो गरुड़ पुराण, उसको पढ़ने के बाद ही इतना भय लगता है कि लगता है भैया वो करेक्टिव कोर्स के लिए कि देखो तेल है वहाँ खौलता हुआ और यहाँ पर ये है, तो एनीवेज एक ऑकल्ट पुराण है, उसका अपना एक औचित्य है, या गीता पढ़ते हैं। गीता पढ़ने से आपके अंदर डिटैचमेंट आता है कि नहीं, हमें ये मृत्यु एक बाहर का दृश्य है, इसके पीछे कुछ और हो रहा है जिसको हम नहीं देख पाते। तो गीता, क्योंकि वो उस श्री कृष्ण की साक्षात दिव्य ऊर्जा से उसके अंदर संग्रहित है, इसलिए जब हम गीता पढ़ते हैं तो अपने आप अंदर में एक अलग प्रकार का डिटैचमेंट आता है, उस चीज़ को देखने की हमारी दृष्टि बदल जाती है। अब यहाँ पे कई बार लोग पूछते हैं कि श्री अरविंद माता जी के उसमें अगर किसी की मृत्यु हो तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। कई लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो बेस्ट मुझे तो लगता है कि सावित्री का म्यूजिक लगा दीजिए और आप बैठिए ध्यान कीजिए, लेकिन किसी भी चीज़ को रिचुअल के रूप में करने की जरूरत नहीं है। मूल चीज़ ये है, माता जी ने कहा है कि बैठ करके कुछ लोग जो प्रेम करते हैं वो उस व्यक्ति को प्रेम पूर्वक विदा करें, विदाई है ये। कोई कम से कम जाने वाले के लिए तो ये शुभ इवेंट ही है, क्योंकि वो तो अब जो भी है, वस्त्र फट गया, श्री अरविंद बहुत उसमें बताते, आपने एक नया वस्त्र खरीदा था, फट गया, जल्दी फट गया मान लीजिए, लेकिन आपको ये पता है कि इससे भी बेटर वस्त्र आपके लिए तैयार कर दिया गया और आपको बस वो वस्त्र पहनना है और फिर से ये एडवेंचर प्रारंभ करना है, तो आप उतना दुखी नहीं होंगे। लेकिन जो पीछे रह गए हैं, जिन्होंने वस्त्र को ही व्यक्ति समझा, वो दुखी हो रहे हैं। ये एक बेसिक चीज है। तो दुख, शोक, ये अज्ञान का परिचय देता है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम जितना अधिक बाहरी इंद्रियों में रहते हैं तो मृत्यु के बाद क्या होता है, इंद्रिय नहीं ढूंढ पाती हैं कहाँ गया व्यक्ति। तो इंद्रियों से संपर्क से ये दुख उत्पन्न होता है, और मन का भी एक पार्ट, जिसने एक मन दो प्रकार से संबंध जोड़ता है संसार के साथ, एक इंद्रियों के द्वारा, मन सिक्स्थ इंद्रिय है, दूसरा वो एक छवि बनाता है, उस व्यक्ति का एक वैल्यू, एक इमेज बनी हुई है, तो वो इमेज रहती है। तो कई बार मन करेक्टिव के रूप में क्या करता है कि इंद्रियों ने खो दिया, लेकिन वो मन एक छवि बनाता है और उस छवि को वो या तो पूजा घर में बिठा देता है या तोड़ डालता है, चला गया, अच्छा हुआ। लेकिन जो आत्मा है वो विस्मृत कभी नहीं करती है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो जो भी कॉन्टैक्ट हुआ है, संबंध रहा है, वो विस्मृत नहीं करती है, और आने वाले समय में वो फिर से जब नया एडवेंचर होता है तो किस तरह का लर्निंग कर हुआ है, किस तरह का संबंध है, वो सब लेकर के वापस आती है। तो यहाँ पर उस पैसेज को हम लोग देखेंगे जिसमें इन सब चीज़ों को बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद सूत्रों के रूप में प्रकट कर रहे हैं। ये पेज 293 पर है, जहाँ अशुपति देखते हैं, ये फिलॉसफी नहीं है। ये श्री अरविंद हमें ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसा इस पुस्तक में लिखा है, ये बहुत सुंदर बात है। पूरी सावित्री में श्री अरविंद ये नहीं बता रहे हैं कि वेदांत में ऐसा लिखा हुआ है, तंत्र में ऐसा लिखा हुआ है, आप उन ट्रुथ्स को देखेंगे इसमें। लेकिन श्री अरविंद क्यों ऐसा नहीं कह रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। माता जी ये बताती हैं कि मेरे जीवन में एक, मेरी जो माँ थी बड़ी मेटीरियलिस्ट थी, तो वो कहती थी जब भी वो बैठ के ध्यान करती थी और प्रकाश का अनुभव करती थी, चेतना का, तो कहती है क्या तुम फिर से अपनी कल्पना के जगत में खो गई, उनको ये सब कल्पना लगता था। और कहती थी जो तुम इंद्रियों से स्पर्श कर पाओ, देख पाओ, वही एकमात्र सत्य होता है। फिर माँ हंसते हुए कहती हैं, लेकिन उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया कि मैंने तब से ये कहा कि जब तक मैं एकदम मोस्ट मटेरियल लेवल पर भगवान को नहीं देख लेती, प्राप्त कर लेती, तब तक मैं उसको पूर्ण सत्य नहीं मानूंगी। तो माँ के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने वो जो भी वो कहती हैं वो सब उनके साक्षात अनुभव हैं, जो एक वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है इसमें और उसमें, जहाँ हम किसी पुस्तक को पढ़कर उसके बारे में हमारी टीका टिप्पणी होती है। तो ये हमको पहले समझना चाहिए कि सावित्री एक अलग कैटेगरी में है, ये साक्षात दर्शन है, ना केवल एक इंस्पिरेशन है, एक इंस्पायर्ड पोइट्री भी होती है। जब व्यक्ति कोई सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है तो इंट्यूटिवली ऐसे सत्य वो प्रकट करता है जिनका पूरा अर्थ शायद वो स्वयं नहीं जानता है। लेकिन सावित्री साक्षात दर्शन है, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने प्रस्तुत किया। अब देखिए क्या देखा उन्होंने यहां पर। इसके पहले हम लोगों ने कॉस्मिक बीइंग का वर्णन पढ़ा था, वर्ल्ड सोल का, इमर्स्ड इन वॉइसलेस इंटरनेटल ट्रांस। जन्म और जन्म के बीच में जो हमारा बीइंग है वो एक स्टेट में चला जाता है, श्री अरविंद बहुत सुंदर वर्ड, ट्रांस, अनकॉन्शियसनेस नहीं, ट्रांस क्या होता है, जिसमें वो अपने ही मूल तत्व में जब कोई चीज विड्रॉ हो जाती वो समाधि होती है। समाधि इज नॉट कि वो उनको पता नहीं था क्या हो रहा है, वो अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है। निद्रा में भी आपको नहीं पता चलता है कई बार की बाहर क्या हो रहा है। समाधि सदैव किसी भी चीज का अपने मूल तत्व की ओर जाना और उसमें एक हो जाना। तो समाधि निम्न चेतना की उच्च चेतना में कॉन्टैक्ट से हो सकती है, हायर माइंड में हो सकती है, इल्यूमिन माइंड में हो सकती है, इंट्यूटिव माइंड में हो सकती है, ईश्वर के साथ भाव समाधि हो सकती है। तो ये सारी समाधि, जब कोई भी चीज विचार हमारे मूल तत्व में चले जाते हैं ज्ञान योग के द्वारा, तो वो एक प्रकार की समाधि है। भावनाएं जब उमड़ घुमड़ती हैं सरफेस पर, जब आप खींच करके उनको भगवान में डाल देते हैं तो भाव समाधि होती है। तो उसी प्रकार से इंटरनेटल ट्रांस एक ऐसी समाधि है जिसमें हम, जो हमारा शरीर छूट गया, प्राण तत्व छूट गया, मन तत्व छूट गया, लेकिन जो आत्मा है वो अपने मूल स्वरूप में, मूल तत्व में चली जाती है। और मूल तत्व कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, वर्ल्ड सोल, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। द बीइंग्स दैट वंस वोर फॉर्म्स ऑन अर्थ सैट देयर इन शाइनिंग चेम्बर्स ऑफ स्पिरिचुअल स्लीप। वहां पर केवल लाइट है, वहां कोई चित्रगुप्त नहीं बैठे हैं कि कौन कहां जाएगा। स्पिरिचुअल स्लीप पास्ट वेयर द पिलर पोस्ट ऑफ बर्थ एंड डेथ, पास्ट वॉज देयर लिटिल सीन ऑफ सिंबल डीड्स, पास्ट वेयर द हेवेंस एंड हेल्स ऑफ देयर लॉन्ग रोड, दे हैड रिटर्न्ड इनटू द वर्ल्ड्स डीप सोल। अब देखिए वो रास्ते में क्या क्या आता है, वो पूरा तीन लाइन में शेरविंद वर्णन कर रहे हैं। पिलर पोस्ट ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये पिलर पोस्ट क्या है, अप टू ए पॉइंट आप वापस आ सकते हैं शरीर के अंदर। ऐसी आप देखेंगे इस पर बड़ी रोमांटिक पिक्चरें भी बनी हैं, और माता जी बताती हैं कि एक डोमेन ऑफ डेथ है जहां उनका एक बहुत पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, और एक पॉइंट तक, और उनको तो बस ये कहा गया इतने लोगों को आपको पिकअप करना है। तो वो जाते हैं, ढूंढते रहते हैं किसके अंदर मरने की चाह है, कौन तैयार है, चलो चलो। अगर आप एकदम दृढ़ होकर अपनी सोल से कहते हैं नो, तो दे विल लीव एंड गो, और वो पास पड़ोस में कोई और तैयार है ले जाएंगे। ये तो मैंने अपने आंखों से इस घटना को देखा है और सुना भी है इसके बारे में, कि मरना किसी को था लेकिन कोई और मर गया, और एक है जिसमें वो व्यक्ति बच गया एक, और वो बताता है अपना पूरा एक्सपीरियंस कि ऐसे लोग आए थे, फिर सुबह उन्होंने देखा कि उनके सिर के ऊपर, अब उस समय लोग ये सब विश्वास करते थे तो देखते थे, तो 3 किलो के निशान, जब उन्होंने मना कर दिया तो पड़ोस में किसी की डेथ हो गई। तो ये एक्चुअल घटना हुई है जो मेरे आंखों की घटना है। अब कोई अरे मरने वाला था ऐसा हुआ, लोग पहले तो विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे रात को तुमने क्या ज्यादा भांग भांग ले ली थी, इस तरह की बातें करेंगे, बिकॉज मैन हैज लॉस्ट दैट साइट। लेकिन एक सीमा होती है जिसके बाद आप आ सकते हो नियर डेथ एक्सपीरियंस, उस सीमा के अंदर तक आप हैं तो यू कैन कम, तब तक आपका कनेक्शन एक सूक्ष्म कॉर्ड के साथ बना रहता है। माता जी जब ये लोग करते हैं रिससिटेट करते हैं आजकल डॉक्टर, कि आप मृत्यु को लगा हार्ट बीट बंद हो गई, आपकी सांस बंद हो गई, लेकिन अप टू ए पॉइंट आप वापस ला सकते हो। तो माँ कहती हैं हंसते हुए, हाँ हाँ दे आर डूइंग एडमिरेबल थिंग्स, लेकिन माँ इसको जनरल रिकमेंड नहीं करती थी, बट शी एक्सेप्टेड, शी एक्नॉलेज की यस ऐसा संभव है कि अप टू ए पॉइंट यू कैन बी ब्रॉट बैक। अब उसमें कई चीजें हैं कि वेदर वन शुड डू इट और नॉट डू इट, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। जनरली ये प्रोसेस अच्छी नहीं होती है, बिकॉज कई बार आप जब जाते हो अकल चीजों को साथ लेके आते हो, और उसमें कौन से बीइंग्स आएंगे, ऐसे लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और आप भी कॉन्टैक्ट में आ रहे हो। तो फॉर ऑल दीज वीडियो जहां वो दिखाते हैं रिससिटेशन, वी शुड अंडरस्टैंड कि हम एक बहुत इंटीमेट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं किसी की चेतना के साथ। तो अनलेस कोई जैसे यंग है जिसके जीवन में अभी बहुत कुछ है, एक रिकवरेबल चीज है, लेकिन कई बार लोग ओल्ड हो गया है व्यक्ति, जबरदस्ती उसको वापस ला रहे हैं। सो यहाँ पे हमको एक बैलेंस्ड व्यू रखना है और एक अकल दृष्टि से इन चीजों को देखना है। तो यहां पिलर पोस्ट ऑफ बर्थ एंड डेथ, उसके पार चले गए तो आप नहीं ला सकते। आप 20 मिनट 30 मिनट आप रिससिटेट करते रहिए, इट इज जस्ट मैकेनिकल, आप नहीं ला सकेंगे। पास्ट वेयर द लिटिल सीन ऑफ सिंबल डीड्स, कुछ समय तक स्मरण रहता है सिंबल सीन्स, जब हम वाइटल के क्षेत्र में घूम रहे होते हैं तो हमें ये रहता है कि अरे वो मेरा कहीं ना कहीं एक आप अनुभव से जुड़े होते हैं किसी ना किसी डोर से, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बड़ा, एक तो भयानक जो कई सारे मैंने जीवन में लोगों ने आके बताए, तो एक तो बहुत पीड़ा कष्टदायक एग्जाम्पल था जहाँ एक बच्चे का एक्सीडेंट होता है, बच्चा मतलब 19-20 ईयर्स का, और उसकी माँ रात को अचानक जागती है और वो देखती है कि दरवाजे पर नॉक हो रहा है, और फिर वो इसके पहले कि वो कुछ समझे उसका बेटा आके रोने लगता है माँ के पास। अब बेटा कहीं और है तो वो सोचती है कि ये चला आया, वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हो रहा है, और वो कहता है मुझे बचा लो मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे हैं पीछे हैं। तो वो डर जाती है कि कौन तेरे पीछे हैं, कहती कोई नहीं कौन आएगा, एंड सडनली ही वैनिशेस, एंड दैट वॉज द मोमेंट व्हेन ही हैड डाइड। तो वो पीछे कौन है, वो जो फोर्सेस होती हैं सारी वाइटल वर्ल्ड की या जो भी, तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल वगैरह, लोग नहीं इस बात को समझ पाते हैं कि इसके पीछे भी फोर्सेस होती हैं जो आपको मृत्यु को पहुंचाना चाहती हैं, बिकॉज दे एक्साइट यू कि और तेज चलाओ और तेज चलाओ, लेकिन उसके पीछे ये फोर्सेस काम कर रही होती हैं, एंड व्हेन यू डाई दे टेक ए जॉय इन ऑल दैट हॉरर ऑल दैट एक्साइटमेंट, और ये उनके पीछे ज़्यादा काम करती हैं जो हॉरर वगैरह की चीज़ें देखते हैं, बिकॉज नेचुरली वो फोर्सेज उनको भी टारगेट करती हैं। तो ये पूरा एक विज्ञान है जिसको हम लोग भूल चुके हैं, ऑकल्ट विज्ञान। तो एक लेकिन एक समय रहता है जब तक हम जुड़े रहते हैं धरती के कुछ लोगों से और हम उनके संपर्क में आने की चेष्टा करते हैं, कभी बाय बाय करने के लिए। उसके लिए मेरा अपना एक बहुत सुंदर अनुभव था माता जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर के साथ, जब एक टुवर्ड दी एंड एक बहुत सुंदर उनके साथ अच्छा संबंध जुड़ गया था, सेम बर्थडे था हमारा। तो जिस रात को जाती हैं उस रात मेरे स्वप्न में आती हैं और एक वाइट गाड़ी के अंदर और उससे उतरती हैं, जीन्स और वाइट टी शर्ट पहनी हुई है, और कहती हैं बाय बाय आई एम गोइंग। तो मैंने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं, कहती नो आई लव इंडियन फूड सो मैं इंडियन फूड खाने के लिए जा रही हूँ। तो अब मैंने कहा ये क्या देखा मैंने, शी हैड डिपार्टेड दैट टाइम एंड शी एक्चुअली यूज्ड टू लव इंडियन फूड, जो मुझे बाद में पता चला कि शी यूज्ड टू लव इंडियन फूड। अब इंडियन फूड यानी मैटर, यानी अब मैं अन्न में उसमें मिलने के लिए जा रही हूँ, ये बहुत सुंदर, यानी बाहरी देह बहुत चेयरफुल हैप्पी। और उनकी मृत्यु भी इतनी कॉन्शियस हुई थी कि उन्होंने ये जाने के पहले सबको बता दिया था दो दिन पहले मैं क्या ड्रेस पहनूंगी किस तरह, इट्स सो अमेजिंग कि ये ड्रेस मेरी मुझे पहनाना जब मैं जाऊंगी, लाइक एज इफ इट्स ए सेलिब्रेशन। और ये एक होता है, लेकिन अप टू ए पॉइंट आप उन लोगों को बाय बाय कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड पास्ट वो सिंबल सीन्स, लिटिल सिंबल सीन, कौन था जिसको हम बड़ा इंपॉर्टेंट समझ रहे थे जुड़े हुए थे, वो सब पीछे छूट जाते हैं। लिटिल सीन ऑफ सिंबल डीड्स, डीड्स हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया, एक मान लीजिए डॉक्टर है जिसने खूब सारे मरीज देखे ठीक किया, अब शेरविंद सिंबल डीड उसके पीछे ये नहीं कि आपने कितने मरीज ठीक किए, उसके आपने थोड़ी करुणा का संचार किया, इंस्ट्रूमेंट बने आपने हजारों पेशेंट ठीक किए लेकिन आपके अंदर में चल रहा था कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। तो वो सिंबल डीड है, वो ये नहीं, करने वाला तो केवल एक भगवान है, आप सोच रहे हो ये इल्यूजन है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन आपकी दृष्टि केवल धन के ऊपर थी। तो सिंबल डीड्स पास्ट वेयर द हेवेंस एंड हेल्स ऑफ देयर लॉन्ग रोड, कहते हैं कि तेरे दिन लगते हैं, कभी कभी जब सुसाइड में बहुत लंबा समय भी एक अंधकार की अवस्था में व्यक्ति जा सकता है, किंतु आमतौर पर 10 दिन 13 दिन जो परंपरा है जिसमें प्राण जगत से जब गुजरते हैं तो उसमें हेवन और हेल आते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था। हेवन और हेल क्या है, अब फिलोसॉफिकली लोग कहते हैं अंदर की अवस्थाएं हैं, बिल्कुल हैं अंदर की अवस्थाएं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हेवन और हेल वैसे भी नहीं है जैसे हम लोग पढ़ते हैं या टेलीविजन पर देखते हैं, लेकिन ऐसे लोक हैं जिसमें अट्रैक्शन के थ्रू हम जैसे जो हमारी अंतिम स्टेट है, जिस तरह की अवस्था में हम त्यागते हैं शरीर, बाय नेचुरल एफिनिटी हम वहां जाते हैं क्योंकि वो बीइंग्स हमारे चारों तरफ रहते हैं, ये कोई पाप पुण्य अगेन नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति बड़े डिस्पेयर में, डिप्रेशन में और सुसाइड में जैसे होता है, बड़ी एंग्जाइटी के स्टेट में उसमें गया है, तो वो इस प्रकार के चेतना के लोक में चला जाएगा जो अंधकार में है, हेल। और अगर कोई बड़े ऊर्जावान रूप में कॉन्शियस डेथ है भगवान का स्मरण करते हुए, तो नेचुरली वो हेवन के थ्रू, वो पैराडाइज के थ्रू, जिसने युद्ध लड़ा है जीवन में अपने अंदर भी और बाहर के युद्ध में भी धर्म का साथ दिया है, तो ये सारे हेवन और हेल से लॉन्ग रोड से पास होते हुए कहाँ चले जाते हैं अंत में, हेवन के बाद कहाँ जाते हैं ये हमें नहीं बताया जाता है। अब वो जाते हैं इन द डीप शाइनिंग चेम्बर्स ऑफ स्पिरिचुअल स्लीप, वहाँ जाकर के वो भगवान की गोद में जाते हैं जहाँ वो बेखुदी की चाशनी चटा देते हैं। और वहां जाके साहब सारे एक्सपीरियंस हमारे अब धीरे 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 वो बदलने शुरू हो जाते हैं अंदर के एक्सपीरियंसेस इनटू देयर इक्विवेलेंट ऑफ डिलाइट. ऑल नाउ वाज गैदर्ड इनटू प्रेग्नेंट रेस्ट. अब ये रेस्ट प्रेग्नेंट रेस्ट अब एक दूसरी तैयारी हो रही है. उन्होंने सारे एक्सपीरियंसेस को डिलाइट में कन्वर्ट कर दिया. तो फिर लोगों को याद कैसे रहती है इतनी डिटेल. माँ बताती हैं कि सब पूरी एक फैब्रिकेटेड. अब लोग पूर्व जन्म है तो एक नई चीज शुरू हुई तो डिटेल में कि मैं बंदर था मैं ये था कहती. पहले तो एनिमल लाइफ आप नहीं याद कर सकते हो क्योंकि आपकी सोल है नहीं, वो एक स्पार्क के रूप में है. और याद क्या रहता है, केवल साइकिक मेमोरीज जिनका डीप इम्पैक्ट रहा आपके सोल पर. दोनों प्रकार की वो हो सकती हैं, एक इंटेंस मोमेंट जहां आपकी सोल बाहर आई तो वो चीजें एक मेमोरी के रूप में आपके अंदर रहती हैं और वही चीजें बाद में आती हैं. तो प्रेग्नेंट रेस्ट तो उन चीजों को बीज रूप में सोख लिया जाता है, उनको रखा जाता है कि अब इसमें से एक नया वृक्ष शुरू होगा, एक नया जन्म होगा. प्रेग्नेंट रेस्ट. पर्सन एंड नेचर सफर ए स्लंबर चेंज. सफर्ड ए स्लंबर चेंज. सो गए कौन थे, फला फला थे, नाम सरनेम वहां पर निकल गया अखबार में, इनका चौथा है, लेकिन वहां पर उनसे कोई, वहां सब चेंज हो गया, भूल गए आप, क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट द न्यू एडवेंचर ऑफ लाइफ. स्लंबर चेंज. इन ट्रांस दे गैदर्ड बैक देयर बाइगॉन सेल्फ्स. अब वहां पे आपको पुराने और भी जन्मों के आधे अधूरे कृत्य हैं. एक जन्म में हम नॉर्मली अपने संचित कर्मों का एक हिस्सा अनुभव के लिए लेते हैं. यू कांट टेक एवरीथिंग बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल. एक ऑर्डिनरी केस में डिवाइन तो फिर आप एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन में आ जाएंगे, डिसओरिएंटेड भी होना पड़ता है कई बार उसमें, लेकिन जनरली हम लोग एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं. अब वो सारे आ जाते हैं, कहते हैं कि यू आर गोइंग टू गो अगेन, प्लीज हम भी हैं, आपको पता ही एक्सपीरियंस अधूरा रह गया, वो अधूरा रह गया. तो दे ऑल आर गैदर्ड इन ए बैकग्राउंड मेमोरी इज फोर्सिंग म्यूज. अब वो मेमोरी में वो सारी चीजें आती हैं जो पूर्व जन्मों की हैं और फोर्सिंग म्यूज, वो आके मुझे ये अनुभव मेरा अधूरा है, ये कृत्य अधूरा है, ये लर्निंग कर्व आपने छोड़ दिया था. आपको याद है ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आप डिसइंटरेस्टेड हो गए थे, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं. प्लीज डोंट टेक इट लिटरली, ज्योग्राफी हिस्ट्री की बात नहीं है. पर होता है, ये जीवन है. कोई थे, उन्होंने माता जी को लिखा यहाँ पे, वो उनकी बोल चाल भी ऐसे थी जैसे घोड़े जैसी, और माता जी ने उनको बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था, घोड़ा थे जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था एक मनुष्य के रूप में. नाम नहीं लूंगा मैं तो, लेकिन लेते लेते तो सब कुछ उनका. छुटनारायण जी तो मिले थे तो कहते थे कि उसका बोलचाल भी ऐसी था. तो माता जी को एक बार उन्होंने लिखा, मदर, थोड़ी मानसिक डेवलपमेंट भी कम था, तो माँ को एक बार उन्होंने लिखा, मदर आई वॉन्ट टू मैरी एन अमेरिकन वुमेन. तो माता जी ने लिखा, नॉट इन दिस लाइफ. तो जब उनकी मृत्यु हुई, बहुत शीघ्र मृत्यु हो गई उसके दो महीने बाद या ऐसे, तो माता जी ने कहा, नाउ ही विल मैरी एन अमेरिकन वुमेन. अब वो एक रह गई कोई इच्छा यही थी. तो एक जन्म में आप देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इंडियन वुमेन बेटर थी. नहीं, सब अच्छे होते हैं, ये कोई रेसिज्म नहीं है, पर बता रहा हूं कि एक एक हमारी अनफिनिश्ड कर्व्स हैं लर्निंग के. इट्स नॉट अबाउट मैरिंग और नॉट मैरिंग, एक अनुभव का निचोड़. तो वो निचोड़ लेकर के वापस प्रोफेटिक ऑफ न्यू पर्सनैलिटी, वहीं पर आपको डिसाइड करना होता है कि नेक्स्ट लाइफ प्रोफेटिक आप डिसाइड करते हो. अब देखो ये कहीं पर नहीं मिलता है हमें, कोई चित्रगुप्त नहीं डिसाइड कर रहा है, आप डिसाइड कर रहे हो. चित्रगुप्त क्या है, सबकॉन्शियस मेमोरी, चित्रगुप्त लिटरली. तो आप डिसाइड कौन कर रहा है, आप स्वयं डिसाइड कर रहे हो कि अब नेक्स्ट लाइफ में, लेकिन किस में, बाहरी चेतना में नहीं. बाहरी चेतना तो बोलेगी अच्छा मैं एक बड़े अमीर आदमी के घर में जाऊं, सोल कहेगी अमीर आदमी के घर जाके मैंने देखा जिंदगी बर्बाद हो जाती है. माता जी बताती हैं एक अनुभव, कहती सपोजिंग यू आर बॉर्न एज एन एम्प्रेस, मे बी इन वन लाइफ यू मे वॉन्ट टू बिकम ए पीसेंट गर्ल. आप रानी थी और आपने ये देखा कि मैं तो बहुत उतर के रस्ते में गोलगप्पे भी नहीं खा सकती हूँ, कोई स्वतंत्रता नहीं है. अब देखिए लोग कहते हैं राजा मिनिस्टर्स इनको कितना मुश्किल है, अगर आश्रम भी आना हो तो बड़ा मुश्किल है, उनको नहीं आ सकते, पूरा लाव लश्कर होगा तो फिर कहते हैं कौन जाए, आप एक मोमेंट नहीं मिलेगा कि आप जाकर के वहां बैठ करके चैन से समाधि पे, आपने देखा होगा ना जब मिनिस्टर्स आते हैं, बहुत दुख होता है देख करके, लोग पता नहीं फोटो कैसे पोस्ट करते हैं, फला फला आए, मुझे देख के बहुत दुख होता है कि ये बेचारे वो ठीक से प्रणाम भी करने में, क्योंकि चार लोग इधर उधर बंदूक ले खड़े हैं, ये क्या है? अब जाके बैठे भी है ध्यान में तो एटमोस्फियर है ना, यू आर ऑल द टाइम, यू कांट फॉरगेट दैट, अनलेस कोई सिद्ध योगी है, वो एक अलग चीज है, या किसी के ऊपर अहेतु की कृपा है, बट दिस इज द सिचुएशन। तो ये सारी चीज किसी ने ये अनुभव किया, तो नेक्स्ट लाइफ शी मे वॉन्ट टू बिकम ए पीसेंट गर्ल, कि मैं एक साधारण गांव में पैदा होंगी, एक फार्मर के यहाँ, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगी, माता जी का नाम लूंगी, उनका काम करूंगी, हो सकता है, संभव है। तो ये देखने से लगेगा कि अरे बेचारी, लेकिन बेचारी नहीं है, ये अनुभव कर चुकी है जो आप अभी कर रहे हो, शी इज गॉन थ्रू दैट, शी इज इन अ हायर स्टेट। कई बार मैं देखता हूँ उड़ीसा में कई लोगों को या सिंपल लोगों को, मुझे ऐसे ही लगता है कि ये सिंपल लोग हमसे कितने आगे हैं, क्योंकि उन अनकॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे जब देते हैं माँ को तो कोई प्रश्न नहीं, कोई ये नहीं उनके अंदर आता कि हमें क्या मिलेगा, एंड सच ए जॉय, इट इज अमेजिंग। कई बार लगता है कि कितनी सीढ़ियां ऑलरेडी लांग चुके हैं जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। आयर्स ऑफ देयर पास्ट देयर फ्यूचर्स डिस्कवरर्स, इनहेरिट किया है और भविष्य की ओर जा रहे हैं, डिस्कवर करना है। इलेक्टर, अब यहां डिस्कवरी है, सब कुछ निर्धारित नहीं है, एक जनरल निर्धारित करती है कि इस तरह का मुझे एक्सपीरियंस, जैसे मैंने कहा कि राजा बनना है या एक सिंपल व्यक्ति, एक ऐसे सिंपल में अंदर की सिंप्लिसिटी, ये नहीं कि सिंपल एक होता है जो अंडर डेवलप्ड है, यहां पर अंदर की सिंप्लिसिटी, एक साधारण जगह मुझे पैदा होना है, तो ये एक जनरल एक चीज, लेकिन उसमें जाके फिर आपको सेल्फ डिस्कवरी, ये नहीं कि सारे इवेंट्स डिटेल्स माँ बताती है कि एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं उसमें। इलेक्टर्स ऑफ देयर ओन सेल्फ चोजन लॉट, और जब ये एक्सीडेंट होते हैं उसका एक साइन होता है कि व्यक्ति सदैव अनकंफर्टेबल होता है। आप देखेंगे कुछ यूरोपियंस हैं जो भारतीय शरीर में हैं, कुछ भारतीय हैं जो यूरोपियन बॉडी में है, तो ये बाहर से, लेकिन समटाइम्स इट कैन बी ऑफ दैट काइंड फॉर ए सर्टेन पर्पस। अब माता जी का तो कॉन्शियस बर्थ है, वो बताती कि मैंने फ्रांस क्यों चुना, लेकिन वो अब इन हर सोल एंड टेम्परामेंट शी इज इंडियन, पर उन्होंने चुना उसका एक प्रयोजन था। पर जनरली कई बार कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक इंडियन बॉडी इंडियन होम में आ गए, लेकिन आप हो कहीं और के, तो आप अंदर में एक चल रहा है कि अरे जाना वहां था, ये हम अट्रैक्ट होके कहाँ चले आए, तो ऑल एवरीथिंग इज पॉसिबल। इलेक्टर्स ऑफ देयर ओन सेल्फ चोजन लॉट दे वेटेड फॉर द एडवेंचर ऑफ न्यू लाइफ, अब फिर से एक नया एडवेंचर। और आगे श्री अरविंद बताते हैं, ऑल दो द ए पर्सन परसिस्टिंग थ्रू द लैप्स ऑफ वर्ल्ड्स, ऑल दो द सेम फॉर एवर इन मेनी शेप्स, ये हम लोग जानते हैं, देही सोल, जो बाहरी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती है। बीथोवेन के बारे में जब माता जी से पूछा, उन्होंने कि ये बीथोवेन इतना बड़ा म्यूजिशियन था, नेक्स्ट लाइफ में क्या करेगा, इससे भी ऊंचा म्यूजिक निकालेगा, कहती नो ही मे बी ए शू मेकर, इट इज अप्रोचिंग द सेम प्रॉब्लम ऑफ बर्थ फ्रॉम अनदर एंगल। अब वो प्रॉब्लम क्या है, दैट वी विल रीड आफ्टर फ्यू लाइन्स। एज्यूमिंग नेम्स अननोन इन अननोन क्लाइम्स, और ये कितना लिबरेटिंग है जब हम लोग ये देखें कि हम लोग कई हरेक देश में अलग अलग देशों में पैदा हुए हैं, तो आप कैसे अटैच हो सकते हो। इसीलिए साइकिक बींग की डिस्कवरी का पहला स्टेप, ट्राई टू फाइंड इन यू दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज ऑफ योर बर्थ। अगर आप उससे अटैच्ड हैं तो आप नहीं पा सकते उसको, क्योंकि यू हैव टू बी डिटैच्ड फ्रॉम दैट। तो देखा जाए तो अभी पृथ्वी जो एक्सेलरेटेड मोड में आ गई इवोल्यूशन के, उसमें यह हो रहा है कि एक व्यक्ति एक ही लाइफ में नाना प्रकार के अनुभव ले रहा है, प्लस टेलीविजन। सो देखा जाए तो एक तरह से इट इज एन एक्सेलरेटेड इवोल्यूशन थ्रू विच होल ह्यूमैनिटी इज गोइंग थ्रू। ऑल्दो द सेम फॉर एवर इन मेनी शेप्स बाय द आउटवर्ड माइंड अनरिकॉग्नाइजेबल, आप नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाहर से, कोई ना कोई एक एस्पेक्ट होता है, लेकिन कब आप जानते हैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, निश्चित होकर जब आप सोल को टच करते हैं, तो आपके पास फ्लैशेस के रूप में, ग्लिम्सेस के रूप में वो आएगी चीज। लेकिन जनरली ये जरूरी नहीं है, महर्षि अरविंद इसको डिस्करेज करते थे, कहते थे कि लोग रोमांटिसाइजेशन में चले जाते हैं, अच्छा मैं वो था, तो ये सब जरूरी नहीं है जानना, लेकिन ये स्मृति जब आप चैत्य को टच करते हैं तभी आ सकती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू वो स्मृति नहीं आएगी, आपका मन प्ले करेगा, सबलिमिनल माइंड के अंदर जो विशेष हैं वो सामने आ जाएंगी, बहुत सारी हमारे अंदर दबी इच्छाएं सामने आ जाएंगी तो उससे आप नहीं जान सकते हैं। द ओनली वे श्योर शॉट, जिसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, जैसे ही आप चैत्य के करीब आएंगे वो स्मृतियां आपके सामने प्रकट होने लगेंगी, डिटेल में नहीं बट एज फ्लैशेज एंड ग्लिम्सेस। इम्प्रिंट्स का नाम है, इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स थ्रू टाइम अपॉन द अर्थ वोन पेज। आप किससे मिलते हैं बहुत फेमिलियरिटी लगती है, नॉट बिकॉज ऑफ एफिनिटी बट समथिंग एल्स। तो वो कोई चीज इम्प्रिंट, कहीं कोई इम्प्रिंट है, सोल रिकॉग्नाइज कर रही है बाहर से सब कुछ बदल गया है, यू कैनॉट रिकॉग्नाइज द पर्सन। ए ग्रोइंग फिगर ऑफ इट्स सीक्रेट सेल्फ एंड लर्न्स बाय एक्सपीरियंस व्हाट द स्पिरिट न्यू टिल इट कैन सी इट्स ट्रूथ अलाइव एंड गॉड। दो कंडीशंस हैं, एक तो आपको अपने चैत्य सत्ता के साथ एक हो जाना है, उसको जान जाना है, देन यू आर फ्रीड फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, यू कैन कम अगेन। हम फिर आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, भगवान का काम करने के लिए। ऐसे लोग कॉन्शियस होते हैं कि वो कुछ काम करने के लिए आए, बहुत जल्दी ही जन्म में वो जन्म से कॉन्शियस हो जाते हैं। या आप आ सकते हो क्योंकि अब आपको एक हायर, उसमें शेयरविंद के योग में एक नया पॉसिबिलिटी खुली है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। या आपका लास्ट बर्थ, कोई शेष चीज रह गई है जिसको एग्जॉस्ट करके आपको निर्वाण में जाना है। माता जी बताती हैं कॉन्शियस एस्पिरेशन आपके अंदर अगर जाग गई है तो जनरली इट इज द साइन ऑफ लास्ट बर्थ। तो अब उसके बाद क्या होगा, आप फ्री हो अंदर में, लेकिन यू मे कम, आप एक नया एडवेंचर में पार्टिसिपेट करने। मेरा यह मानना है कि माता जी श्री अरविंद के योग में कई लोग इस प्रकार के आए हैं, जो हु आर कॉन्शियस ऑफ द सोल, अब वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए एक नए एडवेंचर में, वरना इट वॉज नॉट मैंडेटरी। वंस मोर दे मस्ट फेस द प्रॉब्लम गेम ऑफ बर्थ। प्रॉब्लम गेम क्या है, मैं कौन हूं, बहुत सिंपल है, यही खोज रहे हो। कैसे खोज रहे हो, संसार में सब में आप अपना अक्स ढूंढ रहे हो। ये सच है कि वर्ल्ड एक मिरर है, तो आप इसमें जो जिस हर एक व्यक्ति में आप अपने किसी पार्ट को पाते हो, जिसको अच्छा समझ रहे हो, वास्तव में आपके अंदर कोई अच्छी चीज है जो आप देख रहे हो। मौलाना रूम की एक बड़ी सुंदर एक वो भी है कि अगर आप को लगता है कि ये संसार या वो व्यक्ति करुणा से भरा है तो आपके अंदर करुणा है, यदि आप उस व्यक्ति को समझ रहे हो कि वो अंधकार से भरा है तो आपके अंदर अंधकार है। फैक्ट इज कि हमारे अंदर ये सब कुछ है, तो ये सब हम मिरर के रूप में, यहाँ यानी कि दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं है, पर आप उस पार्ट को देख पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर ये टोटैलिटी से चल रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि उसके अंदर डिविनिटी है, क्योंकि आपके अंदर कहीं डिविनिटी जाग गई है। तो इस तरह से चलते चलते एक दिन क्या होता है, आप स्टम्बल करते हो किनके पास, साक्षात भगवान के पास, किसी न किसी रूप में, जो भी आपके लिए इंटेंडेड है ले जाने के लिए। और आप कहते हो अरे ये है, दिस इज माई पहचान। अब वो पहचान कई रूप में आ सकती है। मैं जानता हूं किसी को जो जिनकी असमय डेथ हो गई, साइकोलॉजिस्ट थी मेरे, अलग सेम इधर मेरा चेंबर और उधर बेंगलोर में काम करती थी, उनको ओवेरियन कैंसर था, फोर्थ स्टेज में था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो प्रभावित हो गई, इस सावित्री वगैरह में पढ़ता था देख के, तो बहुत डीपली टर्न्ड हो गई। नहीं तो एथीस्ट थी तब तक, पूरे परिवार में सब एथीस्ट, लेकिन जब फिर आश्रम आई तो उनको लगा मैं घर आ गई, तो खूब रोई। तो मेरे को आके बोला, अब बोली कि मुझे क्यों लगा कि मैं घर आ गई, खूब रोई। मैंने कहा बहुत सही लगा। उन्होंने अपनी मृत्यु को 6 महीने पूर्व देख लिया स्वप्न में, और मृत्यु के समय डॉक्टर कह रहे हैं कि ये कैसे, क्योंकि वो इंटेंस पीरियड था, वेन यू कैन रियली प्रोग्रेस ए लॉट। मृत्यु का मोमेंट बहुत इंटेंस होता है जब आपको पता चल जाए। तो जब पल्स नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन बगल में उन्होंने केवल एक चीज की डिमांड की थी कि मैं टर्मिनल उसमें कि एक माता जी का चित्र लगा दो, और वो देखते हुए स्माइल करते हुए शी लेफ्ट। पीपल डोंट इवन नो कि व्हेन शी लेफ्ट, देख के पता नहीं चल रहा था कि शी इज अलाइव और नॉट। तो जब देखा पल्स ब्लड प्रेशर नहीं है, शी डिक्लेयर्ड डेड, बट इज ए स्माइल लुकिंग एट मदर्स पिक्चर। और भी मैंने इस तरह के दृष्टांत तो इंस्टेंसेस देखे हैं। तो ये एक रिकॉग्निशन, जैसे अमल किरण कहते हैं कि मेरी, मैं तो हर किसी पर गिर पड़ता था जब तक मैंने साक्षात त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती को देखा और उनके चरणों में भी गिर गया, तब मुझे लगा ये करेक्ट जगह जहाँ गिरा हूं। तो ये होता है कि आप अचानक, अब गुरु क्या करते हैं, गुरु आपके अंदर आपकी ही पहचान आपको अवगत करा देते हैं। उसके पहले आप अपनी फॉल्स पहचान में ये हूं वो हूं, ये पहचान कि मैं इनिशिएट हो गया हूं इस मार्ग पर 100%, ये तब आता है जब आप उस एक क्षण में, उस एक क्षण में आपकी पूरी आने वाले जन्मों की नियति तय हो गई है, मां आई एम योर्स फिनिश्ड. उसके बाद वेल होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो एक क्षण जिस समय आप सब कुछ भूल गए और आपको केवल यह महसूस हुआ कि आई एम हर चाइल्ड, ये क्या है, ये पहचान है. साइकिक बींग तो जानता है इस चीज को कि आई एम हर चाइल्ड, सो व्हाट द स्पिरिट ऑलरेडी न्यू. लेकिन ये डिस्कवरी क्यों होती है, वो एक दूसरी यात्रा है जिसको शेरविंद बताते हैं अन्यत्र. द सोल्स एक्सपेरिमेंट ऑफ जॉय एंड ग्रीफ, एक्सपेरिमेंट है ये, हम केवल जॉय लेने नहीं, ग्रीफ का भी जरा देखें, स्वाद चखें कैसा होता है बिटर वाइन का. एंड थॉट एंड इम्पल्स लाइटिंग द ब्लाइंड एक्ट एंड वेंचर ऑन द रोड्स ऑफ सर्कमस्टेंस थ्रू इनर मूवमेंट्स एंड एक्सटर्नल सीन्स ट्रेवलिंग टू सेल्फ अक्रॉस द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स. इनर मूवमेंट एंड एक्सटर्नल सीन्स, हम लोग केवल बाहर से देखते हैं इसके जीवन में ये हुआ वो हुआ वो, अंदर क्या घटित हो रहा था उसको भगवान देखते हैं, वो उसको नोट करते हैं और उसके अनुसार एक्ट करते हैं, वो अपना वेटेज पॉइंट जो होता है उसके अनुसार देते हैं. बाहर से ये व्यक्ति तो कितने पुण्य काम में लगा था, कितना धर्मात्मा था, गरीबों को भोजन देता था, ये करता था वो करता था, अंदर में देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं. भगवान वो देख रहे, अच्छा ठीक है तुझे अनुभव कराता हूं मैं कितने बड़े हो. एक दूसरा व्यक्ति है, माता जी बताती है आधा सेब, शिव आते हैं और कहते हैं कुछ खाने को है माई, कहती है आधा सेब है आपका पेट भरेगा तो ले लो, पर तूने तो अपने लिए रखा था, कोई बात नहीं तेरी भूख है. माँ कहती दिस इज द परफेक्ट गिफ्ट. शिव को, उसको ये नहीं पता है कि ये शिव है, तो उसका कल्याण हो गया. तो हम बाहर से देखते हैं आधा सेब, ये क्या देना, हमने तो हजारों रुपए दिए, आपके हजारों के मूल्य से वो ज्यादा है. माता जी बताती ना, एक बार किसी ने एक पैसा जो रास्ते में एक बहुत गरीब व्यक्ति कलेक्ट करता था, सुना लोगों से आश्रम में माँ के बारे में, तो कहा आप लोग की मैं तो कभी सुना नहीं, जाना नहीं, कभी शायद नहीं जा सकूंगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा, आप मेरी ओर से एक रुपये माँ को दे दीजिएगा. माता जी उसको हाथ में लेके ट्रांस में चली जाती हैं, कहती हैं भगवान के लिए इस एक रुपये का मूल चुकाना कठिन होगा. तो ये होती है इनर, अंदर में आपकी क्या विल थी. Into creation's center he had come. अब ये सारा वहां पे आगे बताते हैं कि किस तरह से ये सारा we are made unmade. What is made unmade? Form. Form में केवल शरीर नहीं, even हमारी personality. Personality भी समाप्त हो जाती है. इसीलिए माँ कहती है जो लोग immortality की चाह रखते हैं वो भूल जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कि मैं immortal हो जाऊं लेकिन मेरे सारी चीजें जो जुड़ी हैं वो वैसी रहें. माँ कहती ऐसा नहीं होगा, तुम शरीर इमॉर्टल हो जाएगा, बाकी चीजें सब जुड़ी रहेंगी, ऐसा नहीं होगा. दिस डजंट वर्क आउट लाइक दैट. इमॉर्टैलिटी तभी संभव है आप जब नित निरंतर चेंज, यू आर रेडी फॉर दैट कॉन्स्टेंट प्रोग्रेशन, तभी इमॉर्टैलिटी पॉसिबल है, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है. लेकिन आप उस भाव के साथ चेंज हो रहे हो कॉन्स्टेंटली, इवन फिजिकली. माँ इसको कहती हैं डेथलेस स्टेट, जब बॉडी अपने आप को अंडू करके रिडू करता है फ्यूचर वर्ड्स. अभी हम रिवर्स गियर में चले जाते हैं, तो इवन फिजिकली जब हम कॉन्स्टेंटली फ्यूचर वर्ड जा रहे हैं तब इमॉर्टेलिटी पॉसिबल है, नहीं तो मृत्यु है. क्योंकि मृत्यु क्या करती है, तोड़ करके हमें आगे चल वहां से स्टार्ट कर, तेरी कॉन्शियसनेस तो वहां चली गई थी, शरीर साथ नहीं दे रहा था, चल स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो देखा जाए तो मृत्यु यही पर्पस करती है. लेकिन अगर शरीर और मन प्राण कैन फॉलो द फॉरवर्ड मूवमेंट, तब वो मृत्यु रुकेगी, वो कहेगी ठीक है आप तो बहुत अच्छा रेस में चल रहा है, ये बंदा एकदम सही, इनर मूवमेंट के साथ उसका बाहरी गति भी चल रही है. Forces and lives and beings and ideas are taken into the stillness for a while. There they remold their purpose and their drift. रीमोल्ड दिया था भगवान ने इंटेलिजेंस ढूंढने के लिए, हमने किस चीज में लगा दिया, शोहरत कमाने के लिए, किताबें लिख लिख के नाम कमाने के लिए, पेपर्स लिख लिख के स्कॉलरली, अरे हमारा नाम हो रहा है. आई मीन ये कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति इस पर्पस से कर रहा हो चीजें, पर मैं बता रहा हूं कि जहां पर इंटेलिजेंस दी गई थी टू टर्न इट इन साइड एंड अपवर्ड्स टू डिस्कवर द डिवाइन, हमने उसको बाहर और नीचे डाल दिया और उसी चीज में हम पड़े रहे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती भगवान की दृष्टि से, कह सकते हैं कि आप उसको 1000 रुपये वैल्यूएबल समझ रहे होगे, भगवान के लिए वो 1 कौड़ी है, ठीक है, उतना कौड़ी के मोल आपने इंटेलिजेंस को बेच दिया। तो ये सारी चीजें आर टेकन अप, देयर देयर इमोल देयर पर्पस एंड देयर ड्रिफ्ट, रिकास्ट देयर नेचर एंड रिफॉर्म देयर शेप। क्या अद्भुत वर्ड है रिफॉर्म, ये गड़बड़ रह गई थी। तो उस समय आप उस सारी विस्मृत चीजें, जीवन को आपने कहां पर ये ड्रिफ्ट था, कहां आप भटक गए, सबको लेकर के यहां कोई जजमेंट नहीं हो रहा है, वहां ये हो रहा है कि अब आप इसको एक नया ड्रिफ्ट लेके, फिर से ड्रिफ्ट आपका ये था तो वापस कोर्स करेक्शन हो रहा है। लेकिन वो जो अनुभव आपने प्राप्त किया, जो भी ड्रिफ्ट किया, वो अब आपको और एनरिच करेगा, वो अब आपको और अधिक विस्तृत वे में योग में ले जाएगा, ये माता जी बताती हैं। एवर दे चेंज एंड चेंजिंग अवर ग्रो। अब यहां पर आ गया कि रीबर्थ की जो प्रोसेस है इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, पाप पुण्य की प्रोसेस नहीं है। हमारे अंदर जो दिव्यता का बीज है, डिवाइन परफेक्शन जो है अंदर में, उसको कॉन्शियस डिवाइन परफेक्शन, उसको पूरा ब्लॉसम करना है, इसलिए रीबर्थ। अगर एक लाइफ में हम कर लें, एक दो लाइफ में, तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा लंबा समय। सो इट्स ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। पाप पुण्य निर्वाण तो फिर जरूरत क्या थी, जो ओरिजिनल इंपल्स है एको हम भविष्यामी, एक डिवाइन अनंत डिवाइन बनना चाहते हैं, एक कृष्ण अनेक कृष्ण बनना चाहते हैं, तो फिर ये कह देना कि निर्वाण में जाने के लिए सफरिंग, ये तो इसका तो फिर पर्पस ही नहीं हुआ। पर्पस ये है कि एवरीबॉडी हैज टू नॉट ओनली डिस्कवर, केवल हम अपने अंदर डिवाइन को पालें वही नहीं, पूरी तरह हमारे अंदर जो दिव्य संभावना थी, यूनिक दिव्य संभावना, उसको हम पूरी तरह संसार में प्रकट करें, ये हमारा पर्पस है इस सारे उसका, तभी तो ये संसार में एको हम भविष्यामी चरितार्थ होगा। एंड पासिंग थ्रू ए फ्रूटफुल स्टेज ऑफ डेथ। अब देखिए डेथ का पूरा सेंस चेंज हो गया, फ्रूटफुल स्टेज पहले लिखा था प्रेग्नेंट रेस्ट, एंड आफ्टर लॉन्ग रिकॉन्स्टिट्यूटिंग स्लीप, ये सब चीजें गैदर होके, जैसे हमारी निद्रा के अंदर ये होता है कि टॉक्सिन्स बर्न होते हैं, इसीलिए रेस्ट जो लोग नहीं लेते हैं उनके टॉक्सिन्स जमा होते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ रहे हैं कि ये टॉक्सिन्स हमारी जमा हो रहे हैं। आप यू नीड टू रेस्ट, इन टॉक्सिन्स को आप बर्न कैसे करेंगे, ऑर्डिनरीली भी ये स्लीप में होता है, तो अगर आप सोएंगे नहीं तो ये टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होंगे, बीमार होंगे। तो यहां पर यह है कि एंड आफ्टर लॉन्ग रिकॉन्स्टिट्यूटिंग स्लीप रिज्यूम, और ये टॉक्सिन्स कोई आयुर्वेदिक थ्योरी नहीं, इवन एलोपैथिक यू कैन अंडरस्टैंड, मेटाबॉलिज्म होती है बॉडी की, कितने सारी चीजें तत्व उसमें रिलीज होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिनको लिवर किडनी सबको काम करना है। अब आप लिवर किडनी को कॉन्स्टेंटली टैक्स करते जा रहे हो, अब वो बेचारे कहेंगे कि प्लीज हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमारी लिमिट्स है, तो आप सो जाते हो तो वो हैंडल करते हैं इसको, हाँ ठीक है। तो ये एक बेसिक ट्रूथ है, तो टू टेक एनफ रेस्ट एनफ स्लीप, शेयरविंद बताते हैं साधना के उसमें कि 7 hours, 6.5 to 7 hours ऑफ स्लीप इज नेसेसरी, क्योंकि उस समय आपकी चाहिए। अब एक आप ऐसे योग में चले गए जहां माता जी शेयरविंद जिनको स्लीप की जरूरत नहीं है, लेट इज नॉट स्टार्ट इमिटेटिंग स्पिरिचुअलिटी इज डेंजरस। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लोग मेरी तरह, मैं नहीं सोता हूं, यू विल बी फाइन, क्योंकि उनके शरीर में मन में सब शुद्ध हो चुका है, कुछ टॉक्सिन से नहीं एक्युमुलेट हो रहे हैं, तो दे कैन अफोर्ड टू डू इट। पर अगर आपके टॉक्सिन एक्युमुलेट हो रहे हैं क्योंकि मन प्राण शरीर में ऐसी गतिविधियां हैं जो नेगेटिव हैं, तो यू नीड टू स्लीप। मृत्यु में भी यही होता है, आपके सारे नेगेटिविटी ये वो बर्न हो जा रही है, हम शुद्ध नहा के वापस आते हैं, तो फिर कहाँ से नेगेटिविटी आती है, वो एक दूसरी चीज है, वो एनवायरनमेंट हेरिडिटी, इन सबको हम ग्रहण करते हैं, इट्स ए पैकेज, वो हम साथ में लेते हैं, और सोल लेती स्वीकार करती बिकॉज इट वॉन्ट्स टू नॉट टेक दैट चैलेंज एंड डील विद इट। रिज्यूम देयर प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ द गॉड्स अंटिल देयर वर्क इन कॉस्मिक टाइम इज डन। हुज वर्क? गॉड्स एंड द सोल्स। हम लोग गॉड्स की तरह हैं, वे हमारे भाई बहन हैं, एक लेबर है इस धरती के ऊपर परफेक्शन क्रिएट करने के लिए आए हैं, उसी में देवता लोग कार्यरत हैं, लेकिन उनको हमारी जरूरत है, क्योंकि देवासुर संग्राम जब मैटर के ऊपर होता है तो देवता लोग इनफेक्टिव हो जाते हैं, उनकी मैटर पे पकड़ नहीं है एक्सेप्ट थ्रू ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग असिस्ट करते हैं उस प्रोसेस में. जब ये संपूर्ण हो जाएगा देन वी कैन से रेस्ट. लेकिन श्री अरविंद कहते हैं बट इवन देन हु कैन से देयर इज रेस्ट एंड व्हाई रेस्ट. रेस्ट शुड बी वन विद वर्क इन दैट स्टेट. लास्ट में हियर वॉज द फैशनिंग चेंबर ऑफ द वर्ल्ड्स एंड इंटरवेल वॉज लेफ्ट ट्विक्स्ट एक्ट एंड एक्ट. हम सोचते हैं कि हम जीवन में थोड़ा चैन मिल जाए. नहीं, कहते ना मैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता. चैन मिल जाए, इनर पीस मिल सकती है. इनर पीस इज वेरी मच पॉसिबल. और तब वो पूरा जीवन बदल जाता है. ट्विक्स्ट बर्थ एंड बर्थ, ट्विक्स्ट ड्रीम एंड वेकिंग ड्रीम. ये एक प्रकार का स्वप्न है, वो दूसरा स्वप्न है. दोनों अपने अपनी जगह स्वप्न सत्य हैं. ये जो स्वप्न जगत में हम प्रवेश करते हैं मृत्यु के बाद, या स्वप्न में भी कई बार निद्रा में या ट्रांस में, वो ट्राइपल वर्ल्ड्स हैं, मन के, प्राण में, लोक के, जहाँ हम वो सब चीज़ें देखते हैं जो जिसमें पिकअप करते हैं हम यूनिवर्सल नेचर से एलिमेंट्स जिनको लेकर हमको आना है. ये दूसरे प्रकार का स्वप्न है, क्योंकि वो जो स्वप्न है वही चरितार्थ होने के लिए यहाँ धरती के अंदर बीज रूप में बो दिए गए हैं. बिटवीन ड्रीम एंड वेकिंग ड्रीम, इस सेंस में. ये नहीं कि अनरियल है, कई लोग ये स्वप्न है इस तरह, नहीं, इट इज ए ड्रीम फैक्ट विजन ऑफ ट्रूथ. ये स्वप्न किसका है? भगवान का है. तो ये स्वप्न सत्य है, लेकिन ये स्वप्न सत्य दिव्यता की ओर. दिव्यता के नीचे कोई भी चीज फाइनल ट्रूथ नहीं है, वो स्वप्न ही है. वो एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जो मिट जाएगा, मिटता रहता है. रोज हम देखते हैं ना, एक सुबह की फीलिंग शाम को मिट गई, सुबह के थॉट्स शाम को चले गए. स्वप्न में भी यही होता है, इमेजेस आती हैं चली जाती हैं. ए पॉज दैट गेव न्यू स्ट्रेंथ टू डू एंड बी. तो जब हम लोग वापस आते हैं मृत्यु के बाद, कुछ क्षण विश्राम करके, कहाँ? भगवान की गोद में, जिन्होंने हमें बेखुदी की चाशनी चटाई थी. अब वो क्या कहते हैं? शहद देकर उठाते हैं. न्यू स्ट्रेंथ टू बी, टू डू एंड बी. ना केवल करने के लिए बल्कि बनने के लिए. दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. केवल काम नहीं करना है, हमको बनना है. क्या बनना है? दिव्य बनना है. केवल अपने सोल में नहीं, उसमें तो दिव्यता है, उसको ग्रो करना है, परंतु मैनिफेस्टेशन में भी, प्रकृति में भी. नमस्ते.